नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिलायंस जियो ने दिल्ली के बाद गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में अपनी 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। दूरसंचार कंपनी ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी और दावा किया कि इन इलाकों में 5G सेवाएं बहाल करने वाली वह पहली कंपनी है। रिलायंस जियो दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और नाथद्वार में भी अपनी सेवाएं पहले ही शुरू कर चुकी है। इस सूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सबसे नया है। विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी के नेटवर्क सिग्नल दिल्ली NCR के सभी महत्वपूर्ण इलाकों और क्षेत्रों में मिलने लगेंगे। ज्यादातर आवासीय क्षेत्रों, अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी इमारतों, मॉल, प्रमुख बाजारों, टेक पार्क और मेट्रो स्टेशन पर जियो 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा। दिल्ली में जियो के ग्राहक पहले ही जियो 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। NCR क्षेत्र में 5G सेवाएं शुरू करने के बाद ग्राहकों को जियो वेलकम ऑफर का आमंत्रण मिलना शुरू हुआ। इस पेशकश के तहत ग्राहकों को असीमित 5G डेटा और 1 GBPS तक की स्पीड मिलेगी। इसके लिए ग्राहकों को कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। एक जिला एक उत्पाद जैसी महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही उत्तर प्रदेश सरकार अब अलग अलग जिलों के खास खाद्य उत्पादों को भी अलग पहचान दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, फतेहपुर सीकरी की नान खटाई, अलीगढ़ की चमचम मिठाई या फिर कानपुर का सत्तू और बुकनू, इन सभी खाद्य उत्पादों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से GI टैग दिलाने के लिए आवेदन किया जा रहा है। GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक ऐसी कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशेषता का आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है। एक विज्ञप्ति के मुताबिक कृषि विदेश व्यापार विभाग इस दिशा में प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के चौसा आम, वाराणसी, जौनपुर और बलिया के बनारसी पान, जौनपुर की इमरती जैसी कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों का आवेदन पहले ही किया जा चुका है। इनकी पंजीयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश के कुल 36 उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है। इनमें 6 उत्पाद कृषि से जुड़े हैं। वहीं भारत के कुल 420 उत्पाद GI टैग के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें से 128 उत्पाद कृषि से संबंधित हैं। तमिलनाडु को कार्बन उत्सर्जन में एक तिहाई कमी लाने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 60% एकीकृत करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति बिजली खपत करने वाले राज्यों में से एक तमिलनाडु ऊर्जा बदलाव के मामले में प्रमुख भूमिका निभाएगा। तमिलनाडु सतत ऊर्जा बदलाव वार्ता कार्यक्रम के दौरान जारी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु जैसा अत्यधिक औद्योगिकृत राज्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 60% एकीकृत कर अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बावजूद उत्सर्जन को 25-32% तक कम कर सकता है। शोध संस्थान WRI इंडिया की प्रमुख संध्या S राघवन ने कहा कि तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तथा इसमें इजाफा करने की योजना के साथ राज्य अनूठा है। भविष्य में होने वाली क्षमता वृद्धि और उसका उत्सर्जन पर पड़ने वाले प्रभाव एवं दोनों स्रोतों से उत्पादन का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना अनिवार्य है। कोरोना महामारी के बाद लोगों का पर्यटन की ओर एक बार फिर रुझान बढ़ने के बीच राजस्थान में देसी पर्यटकों की संख्या में एक साल अब तक 90.4% बढ़ोतरी देखने को मिली। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022 में राजस्थान में पर्यटकों के आगमन में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। राज्य में देसी पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष 90.4% की वृद्धि हुई। इसके अलावा इस वर्ष सितंबर तक 1.64 लाख विदेशी सैलानी राजस्थान घूमने आए। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न निर्णयों से राज्य में देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होता है, वहीं इससे प्राप्त होने वाली आय से राज्य के विकास को गति मिलती है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक उसके बिक्री केंद्र यानी शोरूम की संख्या बढ़कर 3,700 तक पहुंच जाएगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मानेसर संयंत्र की उत्पादन क्षमता में 1 लाख इकाई की वृद्धि होने के साथ बढ़ी हुई मांग को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। देश में सबसे बड़े कार विनिर्माता की बिक्री केंद्र की संख्या शुक्रवार को 3,500 के आंकड़े को पार कर गई। एक दशक पहले मारुति सुजुकी की डीलरशिप की संख्या 1,300 थी। ऑटो कंपनी ने शुक्रवार को हैदराबाद में अपने 3,500वें बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया, जो नेक्सा की बिक्री इकाई है। MSIL के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शशांक श्रीवास्तव ने कंपनी के नेटवर्क विस्तार योजना के बारे में बताया। उम्मीद है कि मार्च के अंत तक हमारे 3,700 बिक्री केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में बिक्री के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर कंपनी जोर दे रही है। कंपनी का बिक्री नेटवर्क अब शहरी केंद्रों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। वैश्विक निवेश फर्म ब्लैकस्टोन प्रायोजित नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट ने भारत का पहला खुदरा रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट सार्वजनिक निर्गम पेश करने और करीब 50 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए। सूत्रों ने ये जानकारी दी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।